चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। मैं सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वृंद, सज्जन वृंद, मेरे पुत्र और कन्याएं, मैं अभी करीब करीब 3 महीनों तक विश्व के सभी समृद्ध बड़े धनी मानी शिक्षित देशों से होकर के आ रहा, जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। काफी धन वैभव, सभी जगह इतनी उन्नति है भौतिक कि विश्व के लोग अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं धन कमाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, डॉक्टरी सीखने के लिए, कोई भी विषय लोग जा रहे हैं। सभी आदमी, सभी व्यक्ति, सभी जीव सुख चाहते हैं। संसार में ऐसा कौन सा कोई व्यक्ति है जो दुख चाहता हो? एक चींटी भी दुख नहीं चाहती। जितने यहाँ पर आए हैं आप लोग, सभी लोग किसी सुख की दृष्टि से यहाँ पर आए हैं। जो आने जाने से हमारे सांसारिक दुख कम होंगे, हम सुख की एक खबर पाएंगे, अपने जीवन को वैसे ही चलाएंगे जैसे कि जीवन में सुखी हो सके। समस्त प्राणी सुख की चेष्टा करते हैं, दुख के लिए कोई नहीं करता। कोई आदमी ऐसा प्रयत्न कर रहा है कि मैं बूढ़ी हो जाऊं, मेरे गाल पिचक जाएं और चारों तरफ से मुझे रोग घेर ले और मैं मर जाऊं, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। किंतु फिर भी ऐसा होता ही है। मैं भी एक दिन बच्चा था, आप लोग सभी लोग कभी लड़के या लड़कियां जो अब वृद्ध हो रहे हैं, किसी दिन बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, इसके बाद में बड़े हुए, प्रौढ़ हुए, बाल बच्चे हुए, बूढ़े हो गए, हमारे माता पिता हमें छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। कोई मरना नहीं चाहता। अधिक खूब दुख हो और देखेंगे जो दुख से छुटकारा नहीं है, अब तो मरना ही है, तो हो सकता है कि आदमी सुसाइड कर। इसलिए सभी सुख चाहते हैं, चाहने से ही नहीं होता। चाहते तो हैं सभी। मैं 20-22 वर्ष की बड़ी सुंदरी लड़की रहूं, मैं जुआ बना रहूं, शरीर हमारा फौलाद के समान रहे और सारे सुख हमको मिले, दुख की छाया न मिले, इसलिए आदमी पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, विवाह इसीलिए करते हैं, फिर अपने पति को छोड़कर के विदेशों में फैशन है, उससे सुख नहीं मिलिया तो 10 बार बदल लेते हैं, कभी पति बदल लेता है, कभी स्त्री बदल लेता है, उनके जीवन में ये सर स्वाभाविक हुआ। किस लिए? केवल सुख के। सुख चाहने वाला ये है कौन? कहे ये शरीर, गलत बात। अभी शरीर में से प्राण निकल जाए, शरीर चाहेगा जो मुझे सुख चाहिए, प्राण निकल जाएगा तो कौन चाहेगा? इसलिए आत्मा सुख चाहती है, क्योंकि उसका स्वरूप ही आनंदमय है, क्योंकि जहां उसका उद्गम स्थान है, जिससे वो निकलती है आत्माएं, ये वो स्वयं भगवान है। वो है स्वयं भगवान कौन? यहां जो देख रहे हैं बांसुरी बजाते हुए राधा जी के साथ में, समस्त भगवत्ता की सार है। तत्वतः राम, कृष्ण, नृसिंह, बरा, वामन, नारायण, ये एक ही हैं, दो नहीं हैं, सभी भगवान है एक, भक्तों के लिए विभिन्न रूपों में प्रकाशित हैं, किंतु फिर भी शक्ति और सुख के विचार से, रस के विचार से, आनंद के विचार से कृष्ण को समस्त भगवत्ता का सार मान लिया गया है। ये बहुत ऊंची चीज है, इसका हम पीछे से प्रकाश डालेंगे। हम उसके अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, कोई मानो और न मानो। ममई वंशो जीवलोके जीव भूतर्ष, प्रत्येक कीटे मकोड़े, आदमी, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, गाय, हाथी, सुअर, जितने भी प्राणी मात्र हैं, वो सभी अमृतस्य पुत्र, उनके पुत्र हैं या उनके अंश हैं। इसलिए हम सब समय सुख की लालसा होती है, इसलिए हम सुख चाहते हैं, किंतु सुख चाहने से ही सुख नहीं मिलेगा। यदि हमारा प्रोसेस, जिस चीज को हम अवलंबन करके, साधन करके भगवान को पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, ये गलत है। यदि कोई चाहे कि मैं शराब पी करके अपने जीवन में सुखी रहूं, ये संभव है कि नहीं? क्यों? कुछ दिनों तक तो अपने दुख को भूल जाएगा, और जब टीबी और कैंसर हो जाएगा तब पीने से मरेगा, दुख भोगेगा। खाने पीने में सुख नहीं है, किस चीज में सुख है? प्रीति और प्यार में सुख है। प्रत्येक प्राणी ये चाहता है कि हमको सभी लोग प्यार करें, भले ही वो दूसरे को प्यार ना करे, किंतु वो चाहता यह है कि सभी हमसे प्यार से बातचीत करें, बोलें और व्यवहार करें। इस प्रेम में ही सुख है। क्यों? कि कृष्ण का यह स्वरूप है, भगवान का यही स्वरूप है, और हम उनके अंश हैं, इसलिए हम प्रेम तो चाहते हैं, किंतु प्रेम अभी हमारा शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं शुद्ध? जिसे हम प्रेम कर रहे हैं और जिसके द्वारा कर रहे हैं, वही शुद्ध नहीं है। अभी मान लिया कि किसी कोई एक सुंदर लड़का, एक सुंदरी जुआ लड़की को प्यार कर रहा है। किसको प्यार कर रहा है? वो मिट्टी को प्यार कर रहा है, जो 2 दिन के बाद में पुरानी हो जाएगी, सड़गल जाएगी। वो दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं मिट्टी में। जब आत्मा निकल जाएगी तो उसको प्यार करो। तो एक खूब सुंदर लड़का है, एक सुंदरी लड़की है, एक मर गया उसमें से, अब उसे प्यार करो? क्यों नहीं प्यार करते? नहीं करते। एक छोटी सी लघु कथा बतलाता हूं। कोई एक लड़का था, बड़ा ही सुंदर लड़का, बुद्धिमान लड़का था। जब वह 16-17-18 वर्ष का हुआ, 20 वर्ष का हुआ, फिर 24 वर्ष का हुआ, घर वालों ने उसकी शादी भी कर दी। किंतु एक महात्मा के पास में जाया करता। महात्मा ने उसे बताया कि तुम भगवान का अंश है, इसलिए भगवान की सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। माता पिता इत्यादि का संपर्क अधिक से अधिक 60-70 वर्ष का, यदि शुद्ध भी हो तो भी 50-60 वर्ष के बाद में, 100 वर्ष के बाद में तो मर जाना है, फिर वो प्रेम कहाँ रहेगा। संसार में जितने भी प्यार हैं, स्त्री पुरुष, माता पिता, भाई बंधु, पुत्र इत्यादि का संबंध सब स्वार्थ से भरा पड़ा है। उसने कि हमको तो ऐसा नहीं लगता, लड़के ने बतलाया, हमारे माता पिता हमें बहुत स्नेह करते हैं, हमारी पत्नी निस्वार्थ रूप में हमारी सेवा करती है और प्रेम करती है, इसलिए मैं इसको भी मानने में तैयार नहीं। अच्छा ठीक है, तो एक परीक्षा कर लो, मैं तुमको सांस चढ़ाना और उतारना सिखला देता हूं, कैसे अपने प्राणों को रोका जा सकता है। तो तुम घर में जाना, कहना कि आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और धीरे धीरे छटपट जानबूझ करके करना, और उसके बाद में सांस को रोक लेना, और तुम ये दिखलाना कि मैं मर गया। 15-20 मिनट तक तू ऐसा करना। अच्छा ठीक है, सिखला दिया, वो सीख लिया, घर में गया। जब घर वाले सभी थे तो उसने कहा, आज मेरे पेट में बड़े जोर से दर्द हो रहा है, और धीरे 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 अशांत हो गया, खूब छटपटाने लग गया, और फिर धीरे 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 अपने मन को एकदम चढ़ा लिया और एकदम निस्तेज हो गया मरने जैसा। घर वाले लोटने पिटने लग गए, गुरुजी को बुलाया, गुरुजी भी आए, तब तक एक तरह से वो मर चुका था, नाड़ियां फेल हो गई थी। गुरुजी से लोगों ने कहा, जैसे आप इसकी कुछ मदद कीजिए, बच जाए, हम लोग इसके बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। ये बेचा हमारा बड़ा प्यारा था, वो कहती हमारा पति बहुत प्यारा था, सभी लोग कहने लगे। उन्होंने कहा, जे एक बात करो, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, एक शर्त है, इसके बदले यदि अपना कोई प्राण दे दे तो उस प्राण को उसमें लगा दूंगा, वो जीवित हो जाएगा, किंतु वो व्यक्ति मर जाएगा। उन्होंने स्त्री को बुलाया, बेटी तुम्हारा प्यारा है तो हाँ है, तुम अपना प्राण दे दो, इसमें मैं प्राण लगा दूंगा, तू मर जाएगी किंतु ये जीवित हो जाएगा। तो वो सोचने लगी, सोच करके उत्तर दिया, हमारे पिता माता की मैं अकेली संतान हूं, यदि मैं मर गई तो हमारे पिता माता मर जाएंगे, जब ये अपने काल के वर्ष से ये जब मर ही गए हैं तो इसमें करने का कुछ नहीं। मैं सोचती हूँ कि ये मर गए हैं अपने कर्म से, इसलिए मैं इनके लिए चिंतित तो हूँ, किंतु हमारे माता पिता भी मर जाएंगे। उसने अपना प्राण नहीं दिया तो पिताजी को बुलाया, पिताजी ने कहा, जी देखो हमारे तो 3 लड़के हैं और 1 लड़की है और हमारी स्त्री है, यदि मैं मर जाता हूँ तो मैं कमाने वाला, व्यवस्था करने वाला अकेला हूँ, हमारे बच्चे सब अनाथ हो जाएंगे, हमारी स्त्री भी अनाथ हो जाएंगी, अब ये गया मैं क्या कर सकता हूँ, अपना प्राण दे दूँ तो हमारा परिवार ही भूख मरेगा और सभी लोग मर जाएंगे। उसकी मैया को कहा तो मैया ने भी ऐसा ही उत्तर दिया, किसी ने प्राण देने के लिए कोई तैयार जब नहीं हुआ तो गुरु जी ने कहा, जी अच्छी बात है, ये मेरा शिष्य था, मेरा बहुत प्यारा था, मैं अपना प्राण देता हूँ और ये बच निकले। ये कहते ही उसने समाधि लगाई और थोड़े देर में बच्चा भी उठ गया और ये समाधिस्थ हो गए। अब बड़े खुशी हुई लोगों को, ये बच गया, तो उसने कहा, अब जिसने प्राण दिया है उसके लिए ही मैं अब हूँ, मैं समझ गया जी ये जगत का प्रेम क्या है, इसलिए अब तो मैं गुरुजी के पास नहीं जाऊंगा। गुरुजी की भी समाधि टूट गई और वो उनको मनाते रह गए, हजार समझाते रह गए, नहीं माना। वो उनके साथ में जाकर के भजन करने लगा। जब तक हम जगत में हैं, हमारा वैदिक संस्कार, वैदिक ज्ञान यह आरंभ नीचे से करेंगे। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता की पहले सेवा करो, अतिथियों की सेवा करो, स्त्री के प्रति और स्त्री पति के प्रति उत्तरदायित्वशील रहे। यह जीवन दो चक्कों की है, पहियों की है, दोनों मिल करके इसे चलाएं, जीवन में सुखी रहें। कहा तो, किंतु कितने दिनों तक? यदि यह सचमुच में भी हो रहा हो तो कितने दिन? अधिक से अधिक 50-60 वर्ष। इसलिए इसे भी बढ़ करके शिक्षा है, भगवान में चित्त लगाओ, तुम्हारे सब दुख कट जाएंगे भगवान के चरण में प्रीति करने से। इसलिए गीता में, भागवत में सर्वत्र बतलाया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अन्त्वाम सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मास्तु। तुम समस्त प्रकार के धर्मों को छोड़ करके, अधर्मों को छोड़ करके, जितने विचार हैं सबको छोड़ करके तुम हमारा शरणागत हो जाओ। कौन कह रहा? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। और मैं तुम्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दे दूंगा, क्योंकि वह समर्थ हैं, उनके अंदर में शक्ति है। ऐसे ही नहीं, तुम्हारा मंगल हो, मैंने तो कह दिया। क्या मंगल हो? शक्ति समर्थ रहे तब। कोई आदमी मर गया, नारद जी आए, बोले जैसे तुम जग जाओ, अरे बेटा उठो, क्या सो रहा है, और उठ गया। उनमें शक्ति है, जिनमें शक्ति नहीं है हजार आशीर्वाद देते हैं। कह दिया जे तुम्हारा कल्याण हो, कह दिया कि तुम पुत्रवती हो, तुम पुत्रमान हो, होता है। किंतु कृष्ण कह देंगे तो हो जाएगा। ऐसा कोई पावरफुल हो व्यक्ति, साधन सिद्धि पाया हुआ है, वो तो कर सकता है। इसलिए कृष्ण में सामर्थ्य है, वो कर सकते हैं। कृष्ण बड़े दयालु। हम कृष्ण का उपदेश तो सुनते हैं, पालन नहीं कर पाते। यदि पालन करें तो जीवन में सुखी हो जाएंगे, किंतु साधारण चीज नहीं कर पाते। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बतलाता हूं। कृष्ण ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम श्नामि प्रजता। यदि तुम्हारे पास में कुछ नहीं है तो पुष्प भी दो, कोई पत्र भी दे दो, पत्र माने तुलसी इत्यादि पत्र, जलम पानी भी दे दो हमको, बड़े प्रेम के साथ में मैं उसे ग्रहण कर लूंगा, भक्ति के साथ में ही दे। ये क्यों कहा? ये पत्र दे दो या पुष्प दे दो, तुम अपने माता पिता को या अपने पति को केवल पुष्प दे दिया करो, होगा कि नहीं? अपने पति को केवल पुष्प दे दो, भोजन मत दो उनके लिए, भोजन मत पकाओ, कोई भी काम मत करो, दे दो तो प्रसन्न रहेंगे पुष्प से। तो यदि कोई कुछ नहीं दे सकता है तो उसके लिए कहा, अच्छा पुष्प दे दो। तो अपने पति को, अपने पुत्र को पुष्प दो तो उसके लिए क्या देगी? उसके लिए भोजन, अपना दूध, अपना सब कुछ दे देगी, पति के लिए सर्वस्व दे देगी, अपने स्त्री के लिए सर्वस्व दे देंगे, बेटे के लिए सर्वस्व दे देंगे, और भगवान के लिए एक फूल भी रोज नहीं दे सकते। तुम हमारा नाम करो, पति का रोज नाम ले लिया करो, और कुछ मत करो, खुश हो जाएंगे, घर से दूसरे दिन बाहर कर देंगे। कृष्ण ने कहा, जो तुम नहीं कर सकते तो भी ये भी करो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। वो हो सकते हैं, जगत के लोग नहीं। तो क्यों नहीं वो चीज को हम भगवान को दें, जिससे कि सचमुच में प्रसन्न हो, अपने बेटे को हम जो देते हैं, जिन्होंने हमें बनाया, जिसमें प्राण दिया, जिसमें बुद्धि दिया, माता के गर्भ में हमारा पालन पोषण किया, उसको अपने बेटे को जो देते हो, वो कम से कम वो भी तो भगवान को दो तो देते हैं हम। बेटे के लिए अभी लाख रुपया खर्च करके उसे इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, क्या क्या करेंगे सब, भगवान के लिए लाख रुपया दे देंगे, निकल जाएगा। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इससे भी कोई एक चीज है, बड़ी चीज है, श्रद्धा। यदि भगवान को दे सके, यदि पत्र और पुष्प के साथ में श्रद्धा है तो वो ग्रहण करेंगे, और यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया है कि यदि हम कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित कर दें, अपना बहुमूल्य चीज उनके चरणों में समर्पित कर दें, तो वो प्रसन्न होंगे। उनको कोई चीज की कमी नहीं है, वो आत्मारामों के भी आत्माराम हैं, उनको कोई चीज की कमी नहीं है। कृष्ण को क्या कमी है? विश्व ब्रह्मांड का एक मिनट में सृजन लय संहार कर सकते हैं। तभी चाहते हैं, जैसे पिता चाहता है, माता चाहती है, हमारे बेटे हमारी बेटियां हमारे प्रति थोड़ी सी श्रद्धा दे, और अपना सर्वस्व तो उन्हीं उनके लिए। ऐसे कृष्ण ये चाहते हैं, ये हमारा स्मरण करें। जितने भक्ति के तारतम्य हैं, हम लोग भक्ति को ठीक से समझ नहीं पाते। बड़े बड़े पाठक लोग आते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, पांच पांच लाख, छह छह लाख, दस दस लाख रुपए इकट्ठे करके ले जाते हैं। आप लोगों से ले जाएंगे, श्रोताओं से, और लेकर के कहां ले जाएंगे? किसको देंगे? अपनी पत्नी पुत्र और उनको देंगे। उनके लिए भी क्या लाभ हुआ, आप लोगों के लिए क्या लाभ हुआ? यदि जीवन में यह कोई हमें बतलाए, हमारा जीवन सदा के लिए सुखी हो, शांतिमय हो, और उस भगवान से कैसे संपर्क हो सके, उसको हम कैसे प्रसन्न कर सके, तब तक तो ठीक है। क्योंकि वो भी मान ले कि 10-20 लाख या 1 करोड़ लाख रुपए जमा कर लिए, क्या होगा? मरने के समय समय तो सब छोड़ करके जाना, इसे जगत का उपकार नहीं। यदि हमारा दिशा निर्देश कर दे, इस प्रकार से जीवन को चलाने से तुम जीवन में सुखी हो सकते हो, तुम आत्मा का रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति कर सकते हो, और सदा के लिए सुखी रह सकते हैं, यही सबसे बड़ा हमारा गुरु है। जैसे थोड़ा सा तारतम्य मूलक दृष्टि से बतलाते हैं, आप लोगों ने सनत सनंदन, सनत कुमार इत्यादि का नाम सुना होगा। आत्म अनुभव उनको है, आत्म ज्ञान है। भगवान को क्या दिया? भगवान को कुछ दिया? भगवान को तो सर्वत्र देखते हैं, ये बात तो ठीक है। भगवान के शरणागत भी अपने को कहते हैं, किंतु दिया क्या? प्रहलाद महाराज जी ने भगवान को क्या दिया? इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, भागवत में उनका चरित्र वर्णन किया गया है, तो दिया क्या भगवान को? ध्रुव को देखते हैं, ध्रुव ने क्या दिया? भगवान से लिया ना, राज्य ले लिया, और अंत में उनको सुगति भगवान ने दी, किंतु उन्होंने भगवान को क्या दिया? हनुमान जी को देखो, अपना सारा जीवन भगवान के लिए दे दिया। ऐसे हनुमान जी की इस तरह में यदि सेवा कोई कर सकता है, किसके लिए? राम एक निष्ठा उनमें है, और कहीं नहीं निष्ठा रखते। कृष्ण भी भगवान स्वयं है, किंतु राम को उन्होंने चुन लिया, और उनके लिए जीवन मरण सब कुछ उनके लिए, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, अपना सर्वस्व। शादी नहीं की इसीलिए, बाल बच्चे नहीं हुए, कोई एक कुटी अपने लिए नहीं बनाई, ये मेरी कुटी है। भगवान इनसे प्रसन्न नहीं होंगे तो किससे प्रसन्न होंगे? अर्जुन को देखो, इसे भी और अधिक भक्ति का तत्व मैं बतला रहा हूं, जो कैसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता। हनुमान जी तो शारीरिक परिश्रम से दे दिया, किंतु अर्जुन ने जिस चीज को दिया वो हनुमान नहीं दे सकता। कभी नहीं दे सकते। हम लोगों के हृदय में एक बहुत उत्तम चीज है, वो है प्रेम। हम अपने भाई से प्रेम करते हैं, हम अपनी बहन से प्रेम करते हैं, अपनी माता से प्रेम करते हैं। यह प्रेम पड़ोसी से, जो अपने भाई से प्रेम करते हैं अपने पड़ोसी से वैसा कर सकते हैं? बड़ा जरा कठिन, इसमें संबंध है रक्त का। अपनी माता पिता, ब्लड का रिलेशन है ना, आप अस्वीकार भी कर देंगे तो माता पिता का जो संबंध है वो रहेगा ही, आप छोड़ भी दें तो वो संबंध जाएगा नहीं। माता पिता का जो प्रेम करते हैं वो दूसरों से कर सकते हैं, ये संभव पर नहीं। माता पिता अपने पुत्र को जो स्नेह करते हैं, अपनी लड़की को निष्कपट रूप में, यदि ऐसा ही प्रेम भगवान को कर सकें तो ये भगवान प्रसन्न होंगे। अब विचार करके देखिए, जो हम अपने बेटे को जितना प्यार करते हैं उसके लिए हम उत्सर्ग कर सकते हैं, दे सकते हैं, भगवान के लिए इतना देते हैं कि नहीं? भगवान के लिए एक फूल दे सकते हैं और उससे मांगेंगे न जाने क्या क्या राज्य का, उसको मांगे हम हरे हृदय में शांत, महाराज जी हमको शांति मिल जाए, हमको सुख मिले, हमारा बेटा की नौकरी छूट गई है, नौकरी नहीं लगी है, आप ऐसी कृपा कर दीजिए उसकी नौकरी लग जाए, उसकी शादी अच्छे घर में हो जाए, वो अपने जीवन में सुखी रहे। किंतु भगवान को वो प्रेम देने के लिए हम लोग तैयार हैं। यदि कोई भगवान को अपना बेटा मान ले सचमुच में और भगवान उसको स्वीकार कर लें, तो आप जीवन में सुखी रह करके अपना सारा काम कीजिए, आप लोग सुखी रह। इससे भी बढ़कर गोपियों का जो प्रेम है बहुत उच्च कोटि का प्रेम है। गोपियों ने अपने लिए, यहाँ तक कि लोग लज्जा जो नहीं करना चाहिए वो भी, कृष्ण के सर्वस्व त्याग कर दिया, अपना धर्म भी त्याग कर दिया गोपियों ने, जो आज तक के इतिहास में कहीं वेदों में, उपनिषदों में, रामायण में, पुराण में भी नहीं है, कहीं नहीं है इसका। रामचंद्र जी ने धर्म के भय से सीता का त्याग किया। किस लिए त्याग किया? सीता का दोष क्या था? था कुछ दोष? उसने कोई खराब काम किया सीता जी ने? राम ने क्यों प्रत्याग किया? भगवान होते हुए भी लोक लज्जा से डरे, मर्यादा से डरे, जो सीताराम के उनके रावण के घर में कुछ दिनों के लिए, 6 महीने के लिए, 10 महीने के लिए थी, इसलिए त्याग किया, सीता का दोष नहीं था। किसी ने उस समय कहा नहीं, हनुमान ने भी नहीं कहा ये आप ऐसा क्यों करते हैं, वशिष्ठ जी ने भी नहीं कहा जी ऐसा क्यों, माता कौशल्या ने भी नहीं कहा जे बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो, सीता जी का दोष क्या है? यदि कोई जबरदस्ती किसी को छू दिया तो उसमें उसका दोष क्या है? जानबूझ करके मन से छुआ है कि नहीं? नहीं विचार किया। किंतु कृष्ण किसी को छोड़ कर सकते हैं? कृष्ण किसी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गोपियों ने बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी स्वार्थ के कृष्ण से कुछ नहीं चाहा। कृष्ण तुझसे हम प्यार करते हैं, तुम भी हमसे प्यार करना, ये तो स्वार्थ आ गया, तो ध्रुव और दूसरों की भांति हो गया। इसलिए कृष्ण से ऐसा करना है प्रेम, जो उससे कृष्ण के प्रेम से के बदले प्रेम या कुछ मत मांगो, वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत दयालु है, तुम इतना देगा तो वो इतना देंगे। यदि कृष्ण के लिए तुम एक पैर चलेगा तो वो 50 पैर दौड़ करके आएंगे, वो थोड़े से ही तृप्त हो जाते हैं, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं। मैं हे कृष्ण आपकी, मेरे तो गिरधर गोपाल बस मीरा के बन गए, वो कुछ नहीं चाहते, किंतु चाहते हैं उस वैसे ही जैसे गोपियों ने प्रेम दिया, सर्वस्व दिया। उद्धव जी ने जबकि वो गए ब्रज में, गोपियों से मिले और गोपियों का अनंत प्रेम देखा, अथाह प्रेम देखा, देख करके स्तंभित हो गए, कृष्ण ने स्वयं कहा हमारे जितने भक्त हैं उन भक्तों में उद्धव सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि बलदेव जी से भी श्रेष्ठ है और लोगों से श्रेष्ठ है। और वो उद्धव गोपियों का यह भक्ति का समुद्र देख करके, प्रेम का समुद्र देख करके आश्चर्यचकित रह गए। उद्धव जी ने गोपियों से कहा, राधा जी से कहा, आप लोग कृष्ण के लिए बड़े विरह में व्यथित, मैं यहां से जाऊं तो कृष्ण से क्या मैं कहूं, मैं उनसे क्या कहूं बतलाऊं, मैं कुछ कहूं तो? गोपियों ने कोई उत्तर नहीं, एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार, क्या कृष्ण से मैं कहूं कि गोपियां आपके विरह में बड़ी विलाप कर रही हैं और आप यदि नहीं जाएंगे तो वो मर जाएंगे, ये मैं कहूं उनसे और उनको लेकर के आऊं? गोपियों ने क्या उत्तर दिया, खबरदार आप आशा मत कहें, ये कहने की जरूरत नहीं है उनसे, यदि वे मथुरा में सुखी हैं, यदि द्वारकापुरी में अपने महिषियों के साथ में, अपने पुत्र और बच्चों के साथ में सुखी हैं तो उनसे ये कहेंगे ये गोपियां आपको भूल चुकी हैं, वहां उनको कोई दुख नहीं है, बड़ी सुखी हैं, आनंद से हैं, वह वहां पर सुखी रहे, हम चाहे विलाप करते करते मर जाएं कोई भी बात, उनसे मत कहें जो गोपियां दुखी हैं, यदि वो सुनेंगे तो उनका हृदय मक्खन से भी अधिक कोमल है, वो जीवित नहीं रह सकते, इसलिए मत कहें, हम तो बड़ी निष्ठुर हैं, हमारा कलेजा कैसा है, पत्थर से भी अधिक कड़ा, हमने सुना आपने बतलाया कि कृष्ण हमारे लिए बड़े दुखी हैं, दिन रात रोते हैं, किंतु हम मर नहीं गई, हमें कुछ भी नहीं हुआ, और कृष्ण ने यदि सुन लिया तो मक्खन से भी अधिक कोमल हैं, वे बड़े दुखी हो जाएंगे, उनका जीवन दुखी हो जाएगा और वो बच नहीं सकेंगे, इसलिए मत कहना, कहना जो बड़ी सुखी हैं, बड़ी अच्छी तरह से हैं, यदि कृष्ण सुखी रहें ये यदि हम लोग सुनेंगे तो इसी में हमारा आनंद है, हम अपना सुख नहीं चाहती हैं, हम क्या चाहती हैं, कृष्ण सुखी रहे, ये प्रेम है, अपना सर्वस्व दे देना होता है, उसे लेना नहीं। कृष्ण ने राधा जी को, गोपियों को कितने कपड़े दिए होंगे, पालन पोषण किया, कुछ खाने को दिया, कुछ भी दिया, प्रेम दिया, गोपियों के चरणों में लुढ़क गए, यह प्रेम का है। तो हम कृष्ण से ऐसा निस्वार्थ प्रेम करें, इसलिए नहीं कि कृष्ण उसके बदले में हमें दे दें तो यह बनियागिरी हुई, बनियागिरी नहीं करनी है हमें, तब तो प्रेम शुद्ध होगा, ये प्रेम मिलेगा कहां से, यदि गुरु जी ऐसे बड़े भक्त हों, कृष्ण के तत्व को जानने वाले, एकांतिक रूप में हों, उनका भजन करने वाले हों, उनको संसार की किसी भी वस्तु की लालसा नहीं है, आपका धन आपके पास में रहे, गुरु को उसे प्रयोजन नहीं है, गुरु को किस चीज की जरूरत है, तुम्हारे श्रद्धा की, जिसको वो निर्मल करके राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दे, और ऐसा शुद्ध प्रेम है, इसलिए गोपियों का कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम है और किसी का नहीं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा है कि कृष्ण से कोई संबंध जोड़ करके और उनसे प्रेम करो। कैसे संबंध होगा, जैसे लड़की की सगाई कर देते हैं किसी से संबंध हुआ ना, ऐसे गुरु सगाई कर देता है मंत्र के माध्यम से, उसका संबंध हो जाता है, उस संबंध से संसार के पति पुत्र परिवार ये अधिक से अधिक 50 वर्ष, अधिक से अधिक 100 वर्ष, नहीं 500 वर्ष धर लो, नहीं 1000 वर्ष से ऊपर में तो कोई जोगी भी नहीं जीवित रहा, किंतु कृष्ण के साथ यह संबंध हमारा नित्य का है, उनसे पुत्र का संबंध, मित्र का संबंध या गोपियों जैसा प्रियतम और प्रिया का संबंध रख करके यदि कोई भजन करे तो सजीव से उस प्रेम को दिया जा सकता है, कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में, उसे वो स्वीकार कर ले, हमारा जीवन सुखी है, इसलिए एकांतिक रूप में सब देवताओं में भी हमारी रुचि है, कृष्ण में भी है, तो वो नहीं स्वीकार करेंगे। एकांतिक हो, जिनका नाम लेने से व्यास, गणेश, शंकर जी, दुर्गा जी, ये लोग इतने बड़े हुए हैं, गणेश जी की पूजा होती है कि हमारे वो सब देते हैं, किंतु जिन राम का नाम लेकर के, कृष्ण का नाम लिख करके, तीन बार परिक्रमा करके जगत में पूजे हुए, उनकी महिमा जरा देखो। तो शंकर जी जो उस गणेश के भी बाप हैं, वो गणेश शंकर जी क्या करते हैं, गोपी बन करके वृंदावन में बैठे हैं, और गोपियों ने गुलचे मार करके उनके गाल फुला दिए, इसको बाहर कर दो, ये ना जाने कौन है। उससे पूछा गोपी से, अरे तुम्हारे खसम का नाम क्या है, बतला नहीं सकते। अरे तुम किस घर की बेटी है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, जो मैंने तो बतला नहीं सकते। केवल रूप हो गया है उनका, गोपी का। तेरी ससुराल कहाँ है, तुम्हारे पिता का घर कहाँ है, कुछ भी नहीं बतला सके। और उस शंकर को गाल में मार करके फुला दिए गुलचे, और वो रोने लग गए, तो जोग माया ने उनकी रक्षा की। तो शंकर की ये दशा है। ब्रह्मा जी ब्रज में आए, जो इस जगत का सृजन भी करते हैं, कृष्ण को देख करके था नहीं पा सके उनका, उसके प्रेम का, और उनके चरणों में लुढ़क गए। इंद्र का दर्प उन्होंने चूर्ण कर दिया, अब आरती होने वाली है। इस प्रकार से सबका आचार चूर करके कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ भगवत्ता के सार हैं। उनके चरणों में एकांतिक रूप से यदि प्रीति करो, पत्र पुष्प कुछ भी दे दो, अपना प्रेम उनके चरणों में दे दो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। इससे बढ़कर के जगत में कोई उपदेश नहीं है। गौ प्रेमानंदे, अब आरती होगी, आप लोग आरती दर्शन हैं, और भूख लग रहा है अभी, अच्छा तो फिर 10-5 मिनट और बढ़ा दें। इस तरह से इन सब तत्वों को समझकर कृष्ण में एकांतिक भक्ति करो, उससे होगा क्या, यदि राम के प्रति भी हमारी भक्ति है, राम भी प्रसन्न हो जाएंगे, दुर्गा जी भी प्रसन्न हो जाएंगी, गणेश जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण में एकांतिक भक्ति हो, हम उनके अंश हैं, हमारा कर्तव्य है उनको तत्व से समझ करके उनके चरणों में सर्वस्व निवेदन करें, और धीरे धीरे इनको जान करके हम सुखी। कृष्ण में प्रेम बढ़ाओ, तो कृष्ण को तो देखा नहीं, कैसे प्रेम बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उनका श्रवण करके, कथाओं को श्रवण करके। एक लड़की की सगाई हो गई, उसने अपने पति को नहीं देखा। पहले ऐसा होता था, माता पिता जाकर के सगाई कराए, तो उसने सुना कि हमारे पति बड़े सुंदर हैं, उनका नाम यह है, बड़े गुणी हैं। उसने अपने हृदय को उनके चरणों में दे दिया। अब वो सुनती है, जब बीमार है तो दुखी हो जाती है, किसी काम में अच्छा होता है उसके लिए सुखी हो जाती है। वैसे ही भागवत के माध्यम से उनके गुणों का सुन करके, उनके रूप को सुन करके, और हृदय में सर्वस्व हैं, सर्वत्र वो हैं, ऐसा समझ करके उनके चरणों में हम अपने को न्यौछार कर सकते हैं। इस तरह से संबंध रखते हुए कलयुग केवल नाम, कलयुग में केवल भगवान का नाम करने से ही वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कलयुग में लाखों लाखों समस्याएं हैं, दिन रात दुख, और इधर उधर रुपया पैसा होने से भी दुख है, इसलिए उन समस्याओं में से रहते हुए भी भगवान का नाम यदि किया जाए, तो नाम के प्रभाव से धीरे 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 हमारी आत्मा की अनुभूति होगी, और हम कृष्ण को सर्वस्व दे सकेंगे और जीवन में सुखी रह सकेंगे। जो इस प्रकार से भगवान के चरण में आत्मनिवेदन करके भजन नहीं करता, वो सुखी नहीं रहता। उनको ये संसार की सारी वस्तुओं को सदा के लिए छोड़ करके जाना पड़ेगा ही, इसलिए अभी से हम चैतन्य होकर के भगवान के चरणों में निवेदन करके भगवान का भजन करें, सुख दुख जो आता है उसको साथे दें, थोड़ा सा कीर्तन कीजिए। अभी तैयार। जो वाल्मीकि जी ने उल्टा जपा शुद्ध नहीं जुप सके, मरा 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 और कालव्य बन गए। और रामचंद्र जी के जन्म से पहले ही भागवत रामायण की रचना कर डाली। नाम लेत भवसिंध सुखाही, नाम लेने से भव सिंधु, जन्म मरण का चक्र सदा के लिए बंद हो जाता है। और अगस्त जी ने सारे समुद्र का पानी एक चुल्लू में पी लिया, वह वही नाम है जिस नाम को कर करके ब्रह्मा जी शंकर जी अपने इस पद को पाया, वह वही नाम है जिसको दुर्गा और इत्यादि ने इसका गायन कर इसका साधन करके त्रिलोकी में सब कुछ को देते। नाम के बिना जगत में कुछ नहीं। राम नाम को अंक है सब साधन है सुन, अंक गए कुछ हाथ नहीं अंक रहे दस। एक को लिख करके फिर जीरो जीरो दीजिए, दस गुना मान बढ़ता जाए, एक को पहुंच लो और लाख शून्य दे दो, कुछ मूल्य नहीं। इसलिए नाम के द्वारा सर्व सिद्धि हो सकती है। नाम के बिना कलयुग में और कोई साधन, ध्यान आजकल कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, ये सब कोई ढोकोसला ठगबाजी है, इसमें कोई कल्याण नहीं। अपने घर में रहो, हरि नाम करो। जो साधु भगवान के नाम का उपदेश नहीं देता वो साधु साधु नहीं। तुलसीदास जी का महिमा देखो, मीराबाई जी की, सूरदास जी को, सभी लोगों को देखो भगवान के नाम के पर। इसलिए अभी महामंत्र कर रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ में आप लोग करेंगे, घरों में भी जा करके अपनी ताली बजा करके, जैसे तैसे, अकेले हो दुकेले हो, रात में हो दिन में हो, खाने का सोने का कोई नियम नहीं, जब भी कभी कभी कोई कर सकता है। स्नान करके करेंगे कोई जरूरत नहीं है, जब भी हो तभी कर सकते हैं। कलयुग में इससे बढ़ करके और कलयुग केवल नाम, इसको याद रखें। चलिए आरंभ की
और चतुर नार सिंगार बनायो, पीढ़ी के सर पीढ़ी दे सर, पीरोई बेली में चित्र लगायो, पीरोई बीड़ा दियो मुख में और पीरोई हार गले लटकायो, पिया वियोग में पीरी भई और पीरी फटी पर पिया ना आयो। हम प्रेम नगर की बंजारन जप तप आराधन क्या जाने, हम श्याम के नाम की दीवानी व्रत नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोरी ग्वालनिया ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ये प्रेम की बातें हैं ऊधो कोई क्या समझे कोई क्या जाने। मेरी और मोहन की बातें, मेरी और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, कोई एक कहे चाहे लाख कहे, जो होनी थी वो तो होए गई, कोई सांच कहे या झूठ कहे, मैं तो श्याम पिया की होए गई। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, मैं तो दासी तुम्हारी होए गई, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम। Yeah. तुम रे संग नाता।